الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو پچھلی کلاس میں ہم نے یہ جو 19 آیت ہے اس کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر پڑھ کے مکمل کر لیے تھے، سورہ مائدہ کی 19 آیت جلد نمبر 3 ہے، یہ معارف القرآن کی، اس کا پیج نمبر 89 ہے، جس میں ہم نے اس آیت کو اور اس کے خلاصہ تفسیر پڑھ لیا تھا. اب اس کے بعد جو ہے وہ معارف و مسائل آتے ہیں، تو ان کو آگے پڑھنا شروع کر رہے ہیں. آیت نمبر 19 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العزت اہل کتاب کو یعنی بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کے فرما رہی ہیں کہ تحقیق کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو کھولتا ہے تم پر رسولوں کے انقطاع کے بعد. ٹھیک ہے، یعنی باتوں کو کھولتا ہے، کھول کھول کے بیان کرتا ہے. علی فترت من الرسول، اس یعنی جو انقطاع کا جو پیریڈ تھا جس میں کہ رسول نہیں آ رہے تھے، اس کے بعد. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ تم کہنے لگو، یعنی جیسے کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو. اردو میں ہم اس کو ایسے بیان کریں گے، لیکن عربی میں ایک لفظ ان سے جو ہے وہ یہ مفہوم بیان کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو کہ تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس تو بشیر یا نذیر آیا ہی نہیں، کوئی نہ خوشخبری دینے والا آیا اور نہ کوئی ڈرانے والا آیا، بس آ گیا نا، فقط جاءکم بشیر و نذیر، سو آ چکا تمہارے پاس خوشی اور ڈر دونوں سنانے والا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کے اوپر قادر ہے. یعنی ایسا معاملہ بھی جو کہ بہت مشکل نظر آ رہا تھا کہ اتنا لمبا 500 سال، ابھی آگے ہم پڑھیں گے بھی، 500 سال کتنا لمبا پیریڈ ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اکبر بادشاہ، ہم انڈیا پاکستان کے رہنے والے ہیں تو ہم نے کوئی ہسٹری پڑھی ہوگی، تو اس میں اکبر بادشاہ جو ہے وہ آج سے کوئی 500 سال پہلے ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو اب کتنا لمبا پیریڈ جو ہے وہ گزرا ہے اور کتنی نسلیں جو ہیں وہ درمیان میں گزر گئی ہیں، تو اب جو ہے وہ بری بسری چیز ہو جاتی ہے. اور جو چیز نہ ہوئی ہو تو پھر لوگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اب تو ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سٹیمپ لگا دی کہ اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کر دکھاتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ کوئی نہیں کر سکتا. علی کل شیء قدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز آپ چاہیں ہم چاہیں کہ یہ ہو سکتی ہے اور آپ بولنا شروع کر دیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کر دے گا. بھئی اللہ اگر چاہے گا تب کرے گا، ہماری مرضی سے ہمارے چاہنے سے نہیں کرے گا. لیکن جو اللہ چاہے گا وہ کر دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا، کسی مائی کے لال کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کام کر سکے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ تو ترجمہ تھا. پھر معارف و مسائل ہم پڑھ رہے ہیں کہ علا حضرت مفتی شفیع رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی تحقیق معارف و مسائل میں لکھی ہے، تو فرماتے ہیں علا فترت من الرسول، تو لفظ فطرت کو پہلے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ فطرت کے لفظ معنی سست ہونے، ساکن ہونے، اور کسی کام کو معطل اور بند کر دینے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فطرت کا جو لفظ ہوتا ہے نا اردو زبان میں، ایک تو یہ کہ فا کے نیچے اس کے زیر ہوتی ہے، اور دوسرا اس کے بعد تو ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے، وہ جو تو دو وہ والی تو ہوتی ہے، یہ جو دو نقطے والی تا ہوتی ہے نا، یہ لکھ کر کے یہ لفظ فطرت بنتا ہے. اور تا का मखरज अलग है और दुआ का मखरज अलग है, तो उसको फतरत या फितरत पढ़ेंगे, इसको फतरत पढ़ेंगे। तो फतरत के लफ्जी मानी सुस्त होने, साकिन होने यानी स्टॉप हो जाने, या किसी काम को मुअत्तल कर देना, सस्पेंड कर देना, ठीक है, जिसको टेम्पोरारीली सस्पेंड करना भी कहेंगे। अच्छा, इस आयत में आइम्मा तफसीर ने, यानी जो तफसीर के इमाम समझे जाते हैं, बहुत उन्होंने इस फन के अंदर मेहनत करी तो लीडरशिप रोल पे पहुंच गए तफसीर कुरान के अंदर, उन्होंने फतरत के यही मानी बयान फरमाए हैं। और मुराद इससे कुछ अरसे के लिए सिलसिला नबूवत व अंबिया बंद रहना है, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिरसत तक का जमाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में, इस आयत के अंदर लफ्ज फतरत का जो इस्तेमाल है, वो कौन सी वाली फतरत के लिए इस्तेमाल हुआ है? वो ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर के नबी अलैहिस्सलाम तक का जो जमाना है उसके लिए इस्तेमाल हुआ, ठीक है। एक और भी जमाना है जिसके लिए फतरत का लफ्ज जो है वो बहुत मशहूर इस्तेमाल किया जाता है, वो जमाना कौन सा है? वो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जो वही नाजिल हुई थी, पहली वही गारे हिरा में, उसके बाद भी एक वही में गैप आ गया था, उसको भी फतरत वही का जमाना कहा जाता है। वो तकरीबन 2.5 साल से लेकर 3 साल तक का गैप था जिसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोबारा वही लेके नाजिल नहीं हुए थे, वो भी फतरत वही का जमाना कहलाता है। लेकिन यहां पर वो वाला जमाना मुराद नहीं है, ठीक है। तो फतरत मिनर रुसुल लफ्ज से ही जो है वाज हो गया, और आइम तफसीर ने मजीद इसको यानी अपनी तहकीक से कन्फर्म किया। तो जमाने फतरत, इस वाले फतरत के जमाने में ना रसूल वाली जो फतरत है ना, तो इसकी तहकीक में हजरत अब्दुल्ला इब्ने बासतान फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 1,700 साल का जमाना है, 1,700 साल यानी तकरीबन 2,000 साल में 300 साल खाली कम। तो इस तमाम मुद्दत में अंबिया अलैहिस्सलाम की बेसत का सिलसिला बराबर जारी है, हत्ता कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ही हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी वहीं पर नबी थे, और उसी जमाने में ही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का भी तकरीबन, नहीं अय्यूब अलैहिस्सलाम का तो जमाना है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पैरेलल का, ठीक है, कि वो मदियन में थे या वो दूसरी जगह पर थे, और ये अय्यूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो मिस्र में थे, ठीक है। तो अच्छा, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में ही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी जिंदा थे, वो भी अल्लाह के नबी थे, ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद तो फिर हजरत यूशा बिन नून, उनको फौरन से जो है वो नबूवत मिल गई, और उनके बाद यानी सिलसिला लगातार नबियों का सिलसिला चलता रहा था कि दाऊद अलैहिस्सलाम आए, वो जो कुरान मजीद के अंदर हजरत तालूत अलैहिस्सलाम का जिक्र है, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम, ठीक है। बहरहाल, तो ये एक नॉन स्टॉप सिलसिला जो है वो जारी रहा, इसमें कभी फतरत नहीं हुई। सिर्फ बनी इसराइल में से 1,000 अंबिया इस अरसे में मबऊस हुए, और गैर बनी इसराइल में से जो अंबिया हुए वो उनके अलावा है, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इबारत लग रही है, अल्लाह आलम, या तो नकल करने में कुछ गलती हुई है, या हो सकता है कि अब्दुल्ला इब्ने बासतान तक जो है वो एक तारीखी रिवायत पहुंची आई है, ठीक है। तो तारीखी रिवायत की वैसी भी ऑथेंटिसिटी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। तारीखी रिवायत को बनी इसराइली रिवायत भी कहा जाता है, जो उलमाए बनी इसराइल ने जो है वो सहाबा कराम को बताई, ठीक है। तो अब सहाबा कराम उनको नकल कर दिया करते थे, अगर उनमें कोई शरीयत के उसूल के मुखालिफ कोई बात नहीं होती थी तो उसको नकल कर दिया करते थे, ठीक है ना। तो ये भी कोई शरीयत के उसूल का तो मसला यहाँ पे है नहीं कि भाई 1,000 अंबिया आए थे, कि 10,000 अंबिया आए थे, कि 9,000 आए थे, कि 8,000 आए थे, इससे शरीयत का कोई ताल्लुक नहीं है, इससे हमारी आखिरत का कोई ताल्लुक नहीं है। तो अल्लाह आलम उन्होंने इस वजह से नकल कर दिया जो उन्होंने सुना, ठीक है। लेकिन मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दूसरे मकाम के ऊपर तफसीर, इसी तफसीर के अंदर बनी इसराइल के अंबिया की जो तादाद लिखी है ना, वो 10,000 लिखी है, 10,000, ठीक है। तो ईसा अलैहिस्सलाम तो आखिरी नबी थे बनी इसराइल के, और मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो बनी इसराइल के बिल्कुल इब्तदाई अंबिया में से थे, तो अगर इब्तदाई अंबिया के बाद आखिरी नबी तक जो है वो सिर्फ 1,000 हुए, तो फिर बाकी 9,000 किधर गए? ठीक है ना, तो बाकी 9,000 तो फिर याकूब अलैहिस्सलाम के जमाने में सारे के सारे 9,000 आ गए थे क्या? ठीक है, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम से ऊपर सिर्फ एक जनरेशन थी, बल्कि याकूब अलैहिस्सलाम से ही तो बनी इसराइल की आगाज का आगाज होता है। ठीक है, उनके ऊपर सिर्फ इसहाक अलैहिस्सलाम थे, उनके ऊपर सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। ठीक है, तो बनी इसराइल तो याकूब अलैहिस्सलाम से शुरू होता है, तो उनके बाद तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम, ठीक है ना, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद जो है ना वो फिर मूसा अलैहिस्सलाम का ही तस्करा आता है, और उसी दौर में ही बनी इसराइल जो है ना वो बहुत तेजी के साथ उनकी तादाद बढ़ी थी। अब ये मुमकिन हो सकता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान जो है ना वो भी बड़ी तादाद में अंबिया आए हों, लेकिन वो काफी यानी कयास के खिलाफ बात लगती है, क्योंकि वो सारे के सारे बनी इसराइल जो थे मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर के, सॉरी, यूसुफ अलैहिस्सलाम से लेकर मूसा अलैहिस्सलाम तक, वो सारे के सारे मिस्र के अंदर ही गुलामी की जिंदगी गुजार रहे। ठीक है, और वो बहुत ही छोटा सा एरिया भी था, और वो टाइम पीरियड भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं था, तो इस वजह से 9,000 नबियों का उतने से टाइम पीरियड में उतने सी जगह के अंदर आ जाना जरा सा मुश्किल लगता है। बट अगेन अल्लाह, ठीक है, और नकल करने में भी गलती हो सकती है, कोई शरीयत का मसला तो ये है नहीं, इस वजह से बस बात हो गई, आगे चलते हैं। आगे फरमाते हैं कि फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के दरमियान सिर्फ 500 साल का अर्सा है, कंपेयर टू 1700 ईयर्स, सिर्फ 500 साल का अर्सा है। उसमें सिलसिला अंबिया बंद रहा, इसीलिए उस जमाने को जमाना है फतरत कहा जाता है। इससे पहले कभी इतना जमाना अंबिया की बेसत से खाली नहीं रहा। ठीक है, तफसीर कुर्तुबी हजरत ने यहाँ पे नकल किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम व ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान की मुद्दत, इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से खातम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान की मुद्दत में और भी मुख्तलिफ रवायात हैं जिनमें इससे कमोबेश मुद्दतें बयान हुई हैं, यानी मगर असल मकसद पर इससे कोई असर नहीं पड़ता, यानी बेसिकली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये था। ठीक है, 500 साल जैसे हमने भी बात करी, काफी लंबा पीरियड है ना टाइम का। अच्छा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह से रिवायत किया है कि हजरत ईसा और खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान का जमाना 600 साल का था। ठीक है, और इस पूरी मुद्दत में कोई नबी मबऊस नहीं हुए, जैसे कि सही बुखारी व मुस्लिम के हवाले से मिश्कात शरीफ में हदीस आई है, यानी मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस किसको कहते हैं? जो कि बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ दोनों में मौजूद, और ये इससे ज्यादा ऑथेंटिक हदीस जो है वो कम ही होगी सवाई हदीस मुतवातर के, वरना तो ये सही हैन के अंदर जो हदीस मौजूद है। अच्छा, तो इस हदीस में ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अना अवलन नासे बईसा, यानी मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ सब लोगों से ज्यादा करीब, अवला अन्नबीयु अवला बिल मुमिनीन, है ना, सूरह तौबा के आखिर में है ना ये, कि नबी अलैहिस्सलाम तो मोमिनीन के सबसे ज्यादा करीब है। कैसे सबसे ज्यादा करीब है? फिजिकली खाली नहीं, बल्कि इमोशनली सबसे ज्यादा करीब है। सबसे ज्यादा फिक्र मोमिनीन की किसको पड़ी हुई है? नबी अलैहिस्सलाम को। ठीक है, अभी 2 हफ्ते पहले ही सारिज ने जो बयान किया था, आपने से पता नहीं किसी ने सुना होगा नहीं, कि उसके अंदर वो हदीसें बयान करी थी हमारे हजरत, बहुत बयान किया करते थे वो वाली हदीस ना, कि कयामत के दिन जब नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सामने सजदे में गिरे होंगे और अल्लाह ताला की हम्द व सना कर रहे होंगे, हम्द व सना, क्योंकि अल्लाह ताला की जात जो है वो हिसाब किताब शुरू ही नहीं कर रही हो, हिसाब किताब के इंतजार में इवन लोग जो वीआईपी लाउंज में बैठे होंगे ना, वीआईपी लाउंज में कयामत के दिन इवन वीआईपी लाउंज वाले भी तंग आ जाएंगे कि हिसाब किताब क्यों नहीं शुरू हो रहा, कब शुरू होगा। ठीक है ना, क्योंकि आप जाते हैं ना एयरपोर्ट के ऊपर, तो आप वीआईपी लाउंज में बैठे तो नहीं जाते ना। ठीक है, वीआईपी लाउंज में बड़े मजे हो रहे होते हैं, बड़े जो है वो आपको रिफ्रेशमेंट्स मिल रही होती हैं, अच्छे अच्छे सोफे होते हैं, वो सब कुछ होता है, लेकिन कुछ देर के बाद आप कहते हैं यार बस मैं तो डेस्टिनेशन पे जाने के लिए यहाँ पर आया था, वो कब जाएंगे, जहाज कब आएगा। ठीक है, तो वीआईपी लाउंज क्या होगा? वो ईमान वालों के लिए अल्लाह के अर्श का साया हो, तो वो लोग भी तंग आ जाएंगे नबी अलैहिस्सलाम के पास, वो लोग पहुंचेंगे बल्कि पहले तो आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर वहां से आगे कर दिया जाएगा, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, तुम जाओ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, नूह अलैहिस्सलाम के पास, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम के पास, ईसा अलैहिस्सलाम, नबी अलैहिस्सलाम, फिर नबी अलैहिस्सलाम जाएंगे, वो सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह की हम्दो सना करेंगे, इतनी करेंगे इतनी करेंगे इतनी करेंगे कि अल्लाह ताला फरमाएंगे अपना सर उठा लीजिए, मांगिए जो मांगना है, आपकी बात को सुना जाएगा, आप जिसकी सिफारिश करेंगे उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी आपसे। तो नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाएंगे, या रब उम्मती उम्मती उम्मती, राइट। उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी याद नहीं आएगी, उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम को अपने बच्चे याद नहीं आएंगे, अपने अहले बैत याद नहीं आएंगे, कौन याद आएंगे, उम्मती उम्मती उम्मती, ठीक है। तो यहां से फिर जो है वो मामला शुरू होगा। तो नबी अलैहिस्सलाम औला बिल मोमिनीन, ईमान वालों से सबसे ज्यादा करीब कौन है, नबी अलैहिस्सलाम है। यहां पर जो है वो फिजिकल पीरियड की बात हो रही है, तो अना औला नास बी ईसा, ठीक है। तो ईस यानी इंसानों के मुकाबले में मैं सबसे ज्यादा करीब किसके हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम के हूँ। फोकस पीपल उलमाए कराम, हाँ बस ईमान वाले होंगे वो सारे के सारे, ठीक है। तो वो सात नबी अलैहिस्सलाम ने बताई ना कि इन सात में से किसी एक भी सिफत का हामिल होगा तो वो अर्श के साए की तले होकर बहरा। तो फरमाए कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम के साथ सबों से ज्यादा करीब हूँ, और उसका मतलब आखिर हदीस में यह बयान फरमाया कि लैसा बैनना नबीयुन, कि हम दोनों के दरमियान कोई नबी मबऊस नहीं हुए, ठीक है। और सूरह यासीन, अहले बैत क्या उम्मत का हिस्सा नहीं होंगे? बड़ा मजे का सवाल किया आपने, बस मुझे दिल नहीं चाह रहा आपके सवाल जवाब देने का। चले ठीक है जी, बिल्कुल होंगे जी, पहले वह तो वो नबी अलैहिस्सलाम वहां पे मैथमेटिक्स प्ले कर रहे होंगे, राइट। नहीं भाई, बात ये है कि जिसको जिसकी सबसे ज्यादा फिक्र होती है ना, सबसे ज्यादा फिक्र, ठीक है ना, तो फिर वो उसका ही ध्यान जाता है ना, उसी तरफ ध्यान जाता है, वो उसी का नाम ऊपर आता है ना। तो अब हैं तो सारे माशाल्लाह हमारे फ्रेंड्स, लेकिन जो सबसे ज्यादा फ्रेंड होगा, सबसे ज्यादा क्लोजर फ्रेंड होगा, तो उसका नाम आप पहले ले लेंगे ना। अब ये कोई कहना कि भाई आप जो है वो यानी वो भी तो फ्रेंड्स में ही था, तो आप बस सारे फ्रेंड्स की बात कर लेते, तो भाई तब भाई जिसकी फिक्र सबसे ज्यादा पड़ी हुई थी। तो देखें, अहले बैत बेशक नबी अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा करीब हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम उस दिन उस सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त के अंदर अहले बैत को प्रिफर नहीं करेंगे कि पहले इनकी छुट्टी करवाओ, राइट, पहले इनको निजात दिलवाओ, फिर बाद में बाकियों को देख लूंगा, मैं बाद में बाकियों को देख लूंगा, पहले मेरे मेरे घर वाले तो अंदर जाए ना जरा, फिर उसके बाद देखी जाएगी बाकियों को, ऐसा भी तो कर सकते थे ना, राइट। नहीं, बल्कि हम आप जैसा भी जो कि नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान की हालत में इस दुनिया से जाएगा, आप सरसम की तस्दीक करता हुआ इस दुनिया से जाएगा, वो है उम्मती, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम हमें और अहले बैत को एक ही लेवल के ऊपर रखेंगे। इजन दैट ग्रेट, इजन दैट अमेजिंग, राइट। बहरहाल तो है नहीं, चले तो फरमाते हैं कि सूरह यासीन में जो तीन रसूलों का जिक्र है ना, वो दर हकीकत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फरिश्तादा कासिद थे। अब यहाँ पे एक बड़ा इल्मी सवाल पैदा होता है कि भाई सूरह यासीन के अंदर तीन रसूलों का जिक्र है, और जो है ना वो तफसीर में जो है वो पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का जमाना है, ठीक है ना, सूरह यासीन के बिल्कुल शुरू में ही है ना वो, कि जा अमिन अक्सर मदीना थे रजुल यक्सा यसा काला या कौम इत्तबिउल मुरसलीन। तो वो जो मुरसलीन का जो जिक्र हो रहा है, वो कौन थे, वो मुरसलीन तीन थे, ठीक है। तो वो तीन कौन लोग थे, मुरसलीन थे, तो मुरसलीन से मुराद रसूल होता है। तो यहाँ पे उसकी एक जवाब दिया कि वो ईसा अलैहिस्सलाम के फरस्तादा कासिद थे, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती थे, वो रसूल नहीं थे, जिनको लुगवी एतबार से रसूल कहा गया है। देखें, बहुत सारे बच्चे भी और बड़े भी ना कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ते हैं, बल्कि अपने बच्चों को भी तर्जुमा पढ़ाते हैं, बच्चों को भी तर्जुमा पढ़ाना शुरू कर देते हैं और ये समझते हैं कि जी हम बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। ठीक है, नहीं, ये रमजानुल मुबारक के अंदर भी इसके ऊपर काफी तफसील से बात हुई है और स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स के साथ बात हुई है। कुरान मजीद के अपने अल्फाज को एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए रमजानुल मुबारक में ये बात आई थी कि तर्जुमा पढ़ना जो है ना, इससे बात समझ में नहीं आती, बल्कि इससे गलत माने भी जहन में आते हैं, गलत माने भी जहन में आते हैं। ठीक है, और इससे जो है ना फिर शैतान के लिए तफसीर का रास्ता खुल जाता है। अब तफसीर कौन करेगा? तफसीर आपने तो पढ़ी नहीं, ठीक है ना, आप तो तर्जुमा पढ़ रहे हैं, तो तफसीर फिर कौन करेगा आपके लिए? शैतान करेगा तफसीर, ठीक है ना। और इसी तरीके से जो बच्चों का तर्जुमा पढ़ा रही है ना खवातीन, यहाँ पे पता नहीं मौजूद है इसमें खवातीन, ऐसे क्लास सुनती उनती तो नहीं है, लेकिन अगर मौजूद हैं तो वो बात को समझ लें, मान लें कि बच्चों को तर्जुमा नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना। आपको अरबी जुबान सिखानी है, सिखाएं ना अरबी जुबान, क्यों नहीं सिखाते अरबी जुबान? तो कुरान मजीद तो भाई हिदायत के लिए पढ़ा जाता है ना, तो वो हिदायत आपको तर्जुमे से नहीं मिलने वाली है, बल्कि उल्टा तफसीर करने वाला शेख जो होगा ना, वो शेख शैतान होगा, और वो फिर आपको उल्टी तरफ लेके जाएगा, आपके बच्चों को उल्टी तरफ लेकर के जाएगा। अच्छा, मेरे पास तो आई है ना खवातीन, पढ़ाते 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 कुरान मजीद ने किसी ऐसे मौके पर पहुंचे ना जहां खुद परेशान है कि अब मैं बच्चे को क्या बताऊं, अब मुझसे पूछ रही है आकर के, हजरत अब हम क्या करें? मैंने कहा आपने तर्जुमा जो पढ़ाना शुरू किया था तो उस पर पूछा था, तो फिर समझाए कि भैया आप तफसीर पर आए और तर्जुमा पढ़ाना है तो आप स्पेसिफिक छोटी आयत सूरतों का या स्पेसिफिक चीजों को पढ़ाएं, इस तरह से नहीं जो आप सूरह बकरा से उठा के तब तर्जुमा पढ़ाना शुरू कर दें किसी को, ठीक है। तो बात को समझने की कोशिश करें ना, और ये चीजें जो समझ में कैसे आती हैं, ये वंस इन अ वाइल टहलते टहलते क्लास में आ गए और फिर टहलते टहलते निकल गए, ऐसे नहीं समझ में आती हैं बातें, ठीक है ना। जिस तरह आपका अपना प्रोफेशन और आपकी अपनी जो है ना वो एजुकेशन, वो सीरियसली टेकिंग के बगैर जो है ना, वो आप उस मकाम तक नहीं पहुंचे जहां पे आज पहुंचे हो। एक कुरान ही रह गया था, एक दीन ही रह गया था, जिसको कि अनप्रोफेशनली और नॉन सीरियसली जो है वो टहलते टहलते कभी आ गए, टहलते टहलते निकल गए दूसरी तरफ, और समझते हैं कि जी हमें तो सब कुछ पता है और हमें अब बाकी जितना पता नहीं था पता चल गया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो दाखिल होना पड़ता है, दाखिल होना पड़ता है, और उसके लिए यू हैव टू गेट एंगेज्ड। मैंने आपका हिसाब नहीं करना, आपका हिसाब उस रब ने करना है जो कि आपको पूरी तरीके से देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप उसके कुरान के साथ क्या एटीट्यूड रखे हुए हैं और बाकी चीजों के साथ कितना अच्छा एटीट्यूड रखे हुए, उस रब को सब कुछ पता है, ठीक है। तो यहां पर देखें, रसूल का लफ्ज है ना मुरसलीन सूरह यासीन के अंदर, लेकिन यहां पर वही वाला रसूल मुराद ही नहीं है, फिर कौन मुराद है? यहां पर लुगवी माने के एतबार से रसूल कहा गया है, लिटरल ट्रांसलेशन के एतबार से वो रसूल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। लिटरल ट्रांसलेशन क्या होती है? असल में जो लफ्ज है वो रसूल जो है ना वो होता है मरसूलुन, अरसला युरसलु इरसालन फहुआ मुरसलुन, व उरसला युरसलु इरसालन फहुआ मरसूलुन। तो लफ्ज है असल में मरसूल, लेकिन अरबी जुबान के इस्तेमाल में मरसूल नहीं इस्तेमाल किया जाता बल्कि रसूल इस्तेमाल किया जाता, वरना ग्रामेटिकली द प्रॉपर वर्ड इज मरसूलन। अल्लाह ताला है, जो चाहे करें, है ना, हसीनों को हर बात सजती है। अल्लाह ताला ने कहा नहीं, मैं अपने कुरान के अंदर मरसूलन इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं रसूलन इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो रसूल का लफ्ज जो है फिर राइज हो गया लोगों के अंदर, अल्लाह ताला इस तरीके से चीजों को राइज कर देते हैं। तो वो जो रसूल का लफ्ज है वो बमानी मरसूलुन के है, एनी वन हु इज सेंट विद ए मैसेज बाय एनी वन हु इज सेंट विद ए मैसेज बाय एनी, तो इट डजंट नेसेसरीली मीन अल्लाह ताला, क्योंकि जो इस्तेलाही मायने में रसूल का लफ्ज होता है वो सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? जिसको अल्लाह ने भेजा है, वो इस्तेलाही मायने में रसूल के लफ्ज का मतलब है, लेकिन लुगवी मानी इसमें तो किसी का भी, यानी इट्स लाइक अ मैसेंजर, चाहे किसी ने भी मैसेंजर भेजा हो तो उसको भी आप मरसूल कह सकते हैं और उसके लिए भी आप रसूल का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। एज लॉन्ग एज आपके जहन में ये बात है कि मैं यहां पर अल्लाह के रसूल की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं जो हूं वो किसी नबी के रसूल की बात कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नुकता है, आप नाराज हो या जो भी हो आपकी मर्जी है, लेकिन कुरान मजीद तर्जुमे से ना खुद पढ़ने की कोशिश करें और ना जो है वह अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। अरबी जुबान सीखें तो फिर जो है वो आपको ज्यादा बात समझ में आएगी, वरना तफसीर, ठीक है, जो अहले तफसीर, जो आयमे तफसीर हैं, उन्होंने जो तहकीक करके इसके मानी और मफहूम बयान किए हैं ना, उसका सहारा लिए बगैर कुरान मजीद को अप्रोच करने की गलती ना करें। ठीक है, अपनी अकल के ऊपर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। ये अकल जो होती है ये डिपेंडेंट होती है अपॉन द लेवल ऑफ नॉलेज दैट यू हैव। ठीक है, आपके दफ्तर के अंदर कोई आए और आकर के बोलना शुरू कर दे कि जी मेरे पास भी अकल है, आपके पास भी अकल है, आप हटें अपनी अपनी कुर्सी से, हटें, मैं बैठूंगा, मैं यहाँ पे काम करूंगा आपका, क्योंकि मेरे पास भी अकल है ना। दफ्तर में आपको उठा करके कोई साइड पे करे और कहे मैं बैठ के तुम्हारा काम करूंगा, जो चीफ एग्जीक्यूटिव साहब हैं उनके दफ्तर में कोई घुस जाए और कहे कि जी मेरे पास भी दिमाग है और मैं भी बड़ा अकलमंद हूँ, चले चीफ एग्जीक्यूटिव साहब आप निकलिए इधर से, मैं जब बैठ करके आपके कॉरपोरेशन को संभालूंगा, और आप कुछ भी नहीं कर सकें तो बस लॉजिकली उससे कुछ बात करने के आप काबिल हो, तो आप उसको क्या समझाएंगे? भाई तुम्हारे पास नॉलेज है, बेशक अकल तुम्हारी पास होगी, लेकिन तुम्हारी अकल जो है उसके अंदर ये वाली नॉलेज तो नहीं है ना जो इस कंपनी को चलाने के लिए चाहिए होती है। तो पहले वो नॉलेज लेकर के आ जाओ, फिर बैठ जाना यार यहाँ पे आकर के, फिर मैं उठ जाऊंगा तुम अपनी सीट पर से, तुम्हें बैठा दूंगा अपनी सीट के ऊपर। ठीक, ये बेवकूफी की बातें होती हैं, शैतान जो है वो हमसे करवाते रहते हैं और हम जो है वो आगे पास करते रहते हैं इन बातों को। ठीक है, और इससे नुकसान जो करते हैं, मुझे कोई शौक नहीं है आपको डांटने का खाम खा, लेकिन इससे जो लेवल ऑफ डैमेज होता है आपको और आपकी वजह से आपके खानदान वालों को, आपकी औलादों को और आपकी नस्लों को, और उसकी वजह से पूरी उम्मत को जो नुकसान होता है, तो भाई उस नुकसान के ऊपर हम बगले तो नहीं बजा सकते ना, हम तालियां तो नहीं बजा सकते ना उस नुकसान के ऊपर, कि जिसकी वजह से नस्लें भी बर्बाद होती हैं, उम्मत का भी नुकसान होता है, बच्चे भी जो है वो मारे जाते हैं और औरतों की इज्जतें लूटी जाती हैं। आपको अंदाजा नहीं है क्या क्या नुकसान होता है। उस दिन मैं जो है वो एक मेडिकल सेमिनार को थोड़ा सा सुन रहा था, मेरे भाई साहब जो है वो लेके बैठे हुए थे, तो हम भी थोड़ा सा सुन चल रहा था वो, तो वो उसमें ना एक बड़े डॉक्टर साहब को, जो कॉम्प्लेक्स किस्म के डॉक्टर थे, सेमिनार के अंदर वो लेक्चर दे रहे थे इफेक्ट्स ऑफ टोबैको। ठीक है, जब टोबैको का ये इफेक्ट होता है तो टोबैको को इस तरीके से खत्म करना चाहिए, और ये अब उन्होंने कहा कि भाई टोबैको के बारे में तो ना बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो गई है, तो अब जो है ना पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर वेप जो है ना, वेप वो उसने टोबैको की जगह ले ली है, और वेप से जो है ना वो इतने नुकसान हो रहे हैं और उससे भी बढ़कर नुकसान हो रहे हैं, और उसको जो है वो इट हैज बिकम पार्ट ऑफ द फैशन एंड इट्स है ना। अच्छा, उसने फिर कैसे कहते ये जुमला का, कहते हैं कि लोग कहते हैं कि इससे क्या नुकसान हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, तो खुद कहता है कि इससे कैंसर होता है, कैंसर, लेकिन वो इमीडिएटली नहीं होता, बल्कि इट टेक्स ईयर्स, कैंसर डेवलप होने में साल लगते हैं। ठीक है, मैंने उसी वक्त भाई से कहा इन लोगों को ये बात जो है वो दीन में समझ में नहीं आती, दीन में समझ में नहीं आती ये वाली बात, कि अगर तुम्हें इमीडिएटली कोई जो है वो आसमानी बिजली आकर के तुम्हारे सर पे नहीं गिर रही है, तो इसका मतलब ये कोई थोड़ी है कि नुकसान नहीं हो रहा है या नुकसान होगा नहीं, बल्कि टाइम लगता है ना, तदरीजन नुकसान होता है ना, और फिर कितना खतरनाक नुकसान होता है, कैंसर से, कैंसर तो कोई हैसियत ही नहीं रखता उस नुकसान के सामने, कैंसर तो कोई हैसियत ही नहीं रखता, जो कि आखिरत का नुकसान होता है उसके मुकाबले। तो इस वजह से हम नहीं, नहीं भाई आप मिठाई खिलाते रहे हमें, डाटा मत करें, आप जो है ना बड़े प्यार से बात किया करें, डाटा मत करें, भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल के ऊपर असर होता है इन बातों को सुन करके। असर से मुराद मैं अपनी बातों की बात नहीं कर रहा, जो जो इबरत के बातें सुनने को मिलती है ना, देखने को मिलती है ना, इबरतनाक लोगों के हालात, तो असर होता है दिल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, दिल में सिल लेकर के नहीं बैठे हुए कि असर ही कोई ना हो, दिल पे असर होता है, और फिर उसकी उसके जो वजूहात सामने नजर आती हैं 100% नजर आती हैं उसकी वजूहात, अब जब मौका मिलता है वो लोगों के सामने इसी तरीके से बयान, अब चाहे आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे आपकी मर्जी, है, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये इस वाले हादसे की बात हो रही है, वरना तो हादसा एकदम ही हो जाता है, ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है वो तो एकदम होते हैं। बहरहाल ये मजाक की बात हो गई। चलिए, इन्होंने क्या लिखा था, शेयरिंग जस्ट इफ इट कैन हेल्प अस, इफ यू जस्ट फोकस ऑन ट्रांसलेशन देन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द अरबिक लैंग्वेज, 100% ट्रांसलेशन ऑफ कुरान पाक इन एनी लैंग्वेज इज डेड इम्पॉसिबल, इवन ऑल द तफसीर रिटन टिल नाउ कैन नॉट फुलफिल द कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। यही तो बात हो रही है भाई, कॉन्टेक्स्ट में नहीं मिल सकता ना आपको ट्रांसलेशन के जरिए से, तो सीधी सी बात ये तो करी थी और कहीं समझ कर। सो व्हेन इवन तफसीर कैन नॉट मेक अस फुली अंडरस्टैंड हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द कुरान पाक जस्ट विद तर्जुमा। बिल्कुल ऐसे ही है, तफसीर से भी बहुत कुछ तो समझ में आ जाता है, वो भी डिपेंड करता है ना कि किस किस्म की तफसीर है। अब आप जो है वो तफसीर जलालैन बैठ करके समझें कुरान मजीद को, वो भी तो तफसीर है, लेकिन उससे आपको समझ में आएगा बहुत ही मिनिमल किस्म की तफसीर है। तो हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह 20th सेंचुरी के जो स्कॉलर हैं, उन्होंने जो तफसीर करी है वो भाई हमारे अहवाल और हमारे इस्तेदाद के मुताबिक तफसीर करी ना। अब देखें कई कई पेज जो है वो एक एक आयत के ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि दिस इज व्हाट वी नीड। इसके बगैर हमें कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा, इसके बगैर हमें बात ही समझ में नहीं आएगी कि इसमें क्या बयान की जा रही है। और आज के दौर में जो है वो लगे पड़े हैं तर्जुमे के ऊपर, ठीक है, कि इस कुरान में जी समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं, कुछ समझ में कोई नहीं आना, बस वही शैतान का चूंकि फायदा हो रहा होता है ना इसके अंदर, तो इस वजह शैतान लगाता है तर्जुमे के ऊपर कि हाँ भाई मैं फिर इसको घुमाऊंगा अपने हिसाब से, तर्जुमा पड़ेगा। बहरहाल उसके बाद समय अकलमंद कहते हैं ना, अकलमंद के लिए इशारा ही काफी होता है, हमने तो बहुत देर तक तो बात कर ली टॉपिक के ऊपर। अच्छा आगे फरमाते हैं, खालिद बिन सन्नान, अच्छा, और खालिद बिन सन्नान अरबी का जो बाज ने इस जमाने फतरत में होना बयान किया है, उसके मुतालिक तफसीर रूहुल मानी में बहवाले शहाब बयान किया है कि उनका नबी होना तो सही है, मगर जमाना उनका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले है, बाद में नहीं। ठीक है, तो ये खालिद बिन सनान कोई थे, अल अबसी भी इनका नाम आता है यहाँ पे, हजरत अरबी लिखा है, तो ये कोई अरब के अंदर ही थे। ठीक है, इनका जिक्र शाज ही कहीं पे मिलता है, लेकिन हदीस में चूंकि इनका जिक्र है, नबी ने फरमाया कि ये एक ऐसे अब नबी थे कि जिनकी कौम ने ना इनकी कदर नहीं करी या इनको रिकग्नाइज नहीं किया, वाकयात भी कुछ लिखे हुए हैं इस तरह के। तो बहरहाल ये फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम से पहले सरजमीन अरब के अंदर ही थे, लेकिन पहले थे। अच्छा, वैसे तो सरजमीन अरब के अंदर हजरत हूद अलैहिस्सलाम और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, ठीक है, कौम समूद और कौम आद, ये सब सरजमीन अरब के कौम थे ना, हजरत इवन शुएब अलैहिस्सलाम तो खैर उस तरफ थोड़ा सा, लेकिन तो और भी अंबिया सरजमीन अरब के अंदर गुजरे हैं। अच्छा, जमाने फतरत के अहकाम, यानी इसके ऊपर फिर शरीयत के अहकाम क्या आते हैं, कि कौन क्या करेगा तो उसके साथ क्या होगा और कौन क्या नहीं करेगा तो उसके साथ क्या होगा, इसको शरीयत के अहकाम कहा जाता है। आयत मस्कूरा से बज़ाहिर ये मालूम होता है कि अगर बिलफर्ज कोई कौम ऐसी हो कि उनके पास ना कोई रसूल और ना कोई पैगंबर आया और ना उनके नाइबीन पहुंचे उनके पास और ना पिछले अंबिया की शरीयत उनके पास महफूज थी, ठीक है, ना रसूल आया यानी जो कि किताब लेकर के दुनिया में आए या रिसाला बाकायदा सहीफे लेकर के आए, उनको रसूल कहा जाता है आम मीनिंग के अंदर, और नबी जो है वो लोग कहे जाते हैं आम मफहूम में कि जो कि किसी पिछले नबी की जो किताब थी उसी को आगे कंटिन्यू समझाने के लिए जो है वो दुनिया में आए, लेकिन वही अल्लाह ताला उनके ऊपर इल्हामी तरीके से वही उनके ऊपर नाजिल फरमाते थे, लेकिन कोई किताब की शक्ल में वही नाजिल, उनको जो है वो नबी कहा जाता है। तो ना तो कोई रसूल आया, ना कोई पैगंबर आया, और ना पैगंबरों के नाइबीन पहुंचे यानी उलमाए कराम या सहाबे जो कराम जो थे उन पैगंबरों के, वो भी इन लोगों तक नहीं पहुंचे। क्या मतलब नहीं पहुंचे, कोशिश तो बड़ी करी थी लेकिन बेचारे हर जगह नहीं पहुंच सके। भाई अल्लाह ने नहीं पहुंचाया, अल्लाह ने ऐसे असबाब नहीं बनाए कि कोई नबी उस बंदे तक पहुंचता या कोई रसूल या कि कोई नायब उस बंदे तक पहुंचा, अल्लाह मेड श्योर के नहीं पहुंचे कोई उस बंदे तक, अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो अब अल्लाह ने जब ऐसा मामला किया है कि कोई ऐसा पहुंचाया ही नहीं और ना पिछले अंबिया की शरीयत उनके पास महफूज थी कि भाई कोई किताबी शक्ल में कोई चीज उनके पास पहुंच गई महफूज शक्ल में, तो ये लोग जो है ना, अगर शिर्क के अलावा किसी गलतकारी और गुमराही में मुब्तला हो जाएं तो वो माजूर समझे जाएंगे, यानी इनके पास जेन्युइन एक्सक्यूज समझा जाए। क्या मतलब समझे जाएंगे? मैंने और आपने समझना है उनको, मैंने और आपने अगर वहां तक पहुंच जाना होता तो हम बता नहीं देते उनको नबी के बारे में और शरीयत के बारे में। और जब हम पहुंचे ही नहीं वहां पर, तो अब हमारे समझने ना समझने से क्या होता है? मतलब यहां पर क्या है कि कयामत के दिन इनके साथ क्या हो, कयामत के दिन इनके साथ क्या माम, ये है इसका मतलब, ठीक है ना? हम आप क्या समझेंगे, ये मतलब नहीं है यहां पर इसका। तो कयामत के दिन वो लोग माजूर गर्दाने जाएंगे, ठीक है, वो मुस्तहक अजाब नहीं। इसीलिए हजरत फुकहा का अहले फतरत के मामले में इख्तिलाफ है कि वो बख्शे जाएंगे या नहीं बख्शे जाएंगे, ठीक है ना? अब कुछ फुकहा की कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ की कोई हो, तो एक यानी एक है कि भाई बख्शे जाएंगे, दूसरे कहते हैं कि नहीं बख्शे जाएंगे। नहीं बख्शे जाएंगे वालों के पास क्या दलील है? जो बख्शे जाएंगे उनके पास तो ये दलील है कि भाई अल्लाह ने उन तक पहुंचाया नहीं किसी को, तो उनको पता ही नहीं था कि भाई ये नमाज पढ़नी है, ऐसे जकात देनी है, ऐसे जो है वो शराब नहीं पीनी है, या जो है वो और इस तरह के बहुत सारे कि भाई औलाद को क्या हुकूक देने हैं, विरासत की तकसीम कैसे होनी है, कुर्बानी कैसे कर, ये सब पता ही नहीं उनको कुछ, ठीक है ना? तो अब कुर्बानी ना करने का उनको गुनाह होगा, जकात अदा ना करने का उनको गुनाह होगा? नहीं, क्योंकि उन तक ये नॉलेज पहुंची ही नहीं, ठीक है? तो जो कहते हैं फुकहा कि वो बख्श दिए जाएंगे, तो वो कहते हैं भी पहुंचे ही नहीं उन तक, और जो कहते हैं कि नहीं बख्शे जाएंगे, उनकी क्या दलील है? तो आपसे अगर पूछे, मैं बड़ी देर से बोले तो मैं जवाब, तो जो कहते हैं कि नहीं बख्शे जाएंगे, उनके पास भी तो कोई दलील होगी ना, खामखा में तो नहीं वो ऐसी बात कह देंगे कि भाई नहीं बख्शे जाएंगे, उन्होंने खामखा में तो ये बात नहीं कह दी, तो क्यों? इन्होंने जवाब में लिखा है कि फतरत में तौहीद, इसी की बेसिस पर उनका हिसाब किताब होगा। फतरत में तौहीद है ना, तो तौहीद का मसला तो यहाँ पे कुछ थोड़ी है, यहाँ पे तो हम गलतकारी और गुमराही यानी नमाज रोजा हज जकात विरासत और हुकूक और इन सब चीजों की बात कर रहे हैं, तो वो तौहीद से कुछ थोड़ी पता चलता है। चले नाइस अटेम्प्ट, लेकिन कोई और अटेम्प्ट करे अगर इसके इस जवाब को, कि शिर्क के अलावा की बात हो रही है, यानी वो तौहीद पर ही रहे लेकिन उन्होंने दूसरे मामलात जो थे ना, शरीयत के अहकाम जिनको कहते हैं, वो उन्होंने पूरे नहीं किए। तो जो फुकहा कहते हैं कि उनको सजा होगी कि उनको क्यों उन्होंने क्यों जो है वो शरीयत के अहकाम पूरे नहीं किए, तो उनकी दलील क्या है? शरीयत को मस करने का गुना नहीं, शरीयत उन तक मस हालत में ही पहुंची, शरीयत उन तक मस हालत में ही पहुंची, उन्होंने खुद नहीं उसको मस किया, तो अब इनको सजा क्यों होगी? ठीक है, तो वो जो फुकहा कहते हैं ना कि इनको सजा होगी, उनकी दलील बस इतनी है कि जो अल्लाह ताला ने अकल बनाई है ना अकल, तो वो अकल भी जो है ना वो भी मरसूलन टाइप की चीज एक है, मरसूलन, ठीक है ना? अकल में अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी है कि दे शुड हैव सॉट द ट्रूथ, दे शुड हैव सॉट द ट्रूथ, दे शुड हैव सर्च फॉर द ट्रूथ। किस वजह से? अकल की वजह से, क्योंकि अकल भी जो है ना वो भी एक रसूल है अल्लाह ताला का, ठीक है? ये उनकी दलील है, लेकिन अब ये दलील जरा सी फार फेस्ट किस्म की दलील है, इस वजह से ये राजह नहीं है, ये ओपिनियन जो है ना ये राजह नहीं है। राजह ओपिनियन फुकाहा के दरमियान क्या है, प्रेफर्ड ओपिनियन क्या है, कि दे विल बी फॉरगिवन, ठीक है, दे विल बी एक्सक्यूज्ड, ठीक है? वैसे आप लोगों ने जवाब तो सही दिया, लेकिन अकल का जो लफ्ज है ना वो रह गया था, तो वो शायद इसने बता दिया, वो मैंने भी कहीं पढ़ा था भाई, मुझे भी कहीं वही नहीं ना दिया, कोई पढ़ा था बस मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह की तफसीर क्या था। बहरहाल, तो जमहूर का रुझान ये है कि उम्मीद इसी की है कि वो बख्श दिए जाएंगे, जमहूर का यानी राजे प्रेफर्ड ओपिनियन क्या है, जो कि मेजोरिटी का ओपिनियन होता है, तो तो उनका यही है कि वो बख्श दिए जाएंगे, जबकि वो अपने उस मजहब के पाबंद रहे हों जो गलत सलत उनके पास हजरत मूसा या ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से मंसूब होकर पहुंचा था। ठीक है, अच्छा बिल्कुल भी कुछ नहीं पहुंचा ना, फिर भी वो बख्श दिए जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुछ पहुंचने ही नहीं दिया उन तक, अल्लाह की मर्जी भाई, बशर्ते कि वो तौहीद के मुखालिफ और शिर्क में मुबतला ना हो। क्योंकि मसला तौहीद किसी नकल का मोहताज नहीं, मसला तौहीद जो है ना ये सिर्फ अकल की बुनियाद पर भी नहीं है, बल्कि ये तो बिल्कुल इननेट फितरत का हिस्सा है, बिल्कुल जिसको अभी पिछले दोनों बहुत बात हुई है कुदरतन अल्लाह ताला की तरफ से, कि यही मौजू जो है वो सूरह अनाम की तफसीर में भी आ रहा, और यही मौजू जो है वो यानी सहाबा कराम की सीरत की क्लास में भी यही मौजू चल रहा, और वही मौजू जो है वो अल्लाह ने सूरह मायदा के अंदर भी शुरू करवा दिया कि फितरत में गूंधी हुई है अल्लाह ताला ने, ये फितरत फातो वाली फितरत तौहीद, तो इसके अंदर तो लैक्सिटी की गुंजाइश ही नहीं है किसी भी इंसान के लिए। वो हर इंसान जरा सा गौर करे तो अपनी अकल से मालूम कर सकता है, यानी अपने ही दिल में उसकी तौहीद मौजूद है, बस जरा सा कनेक्ट दिल में क्या है वो, बस जरा गर्दन झुकाई देख ली, तो वो गर्दन झुकाओ ना जरा सब इधर उधर क्यों और देखते रहते हो, गर्दन झुकाओ तो मैं खुद ही जो है ना वो अल्लाह ताला अपने अंदर अल्लाह ताला का एहसास मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छा इसके ऊपर इस मौके पर एक बहुत अहम मसला जो कि पिछली दोनों खवातीन की क्लास के अंदर भी डिस्कस हुआ था, और वो है ही इतना अहम कि भाई आजकल के दौर के अंदर ये जो डिस्कशन है, ये जो सवाल है ना, वो खुसूसा नौजवानों के अंदर, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ नौजवानों में नहीं बल्कि अच्छे खासे अब तो 50-60 साल के लोगों में भी इस किस्म के मसले चल रहे हैं कि काफिर को क्यों अजाब दिया जाएगा और मुसलमान को क्यों सवाब दिया जाएगा, वो जहन्नम में क्यों जाएगा, ये जन्नत में क्यों जाएगा, ये लेफ्ट एंड राइट यही किस्म के चल रहे हैं मामलात स्कूल कॉलेजों के नौजवानों में, और लड़कियों लड़कियों में तो बहुत, लड़के लड़कियों में सब में, तो इसकी क्या वजह है, ये आजकल इतनी डिस्कशन क्यों क्यों चल रही है हमारे मुसलमान बैकग्राउंड वाले नौजवानों के दरमियान ये डिस्कशन आजकल इतनी क्यों चल रही है कि काफिर को अजाब क्यों होगा या काफिर जो है वो जहन्नुम में क्यों जाएगा, व्हाई व्हाई इज दिस इवन टॉक्ड अबाउट दिस, Why is this such a favorite topic of discussion? कि मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप किसी ने बताया तो मेरी बात मान लें कि चल रही है भाई, नौजवानों ने बताया है और बड़े अरसे से चल रही है, कई सालों से चल रही है और अब जो है वो तेज हो गई है बहुत ज्यादा, ऐसा लगता है दिल के आईने में है तस्वीर यार जब जरा गर्दन झुकाई देख ले। जी जी ठीक है, उन्होंने जवाब सही दिया है बिल्कुल कि वी हैव मेड नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स, ठीक है, मुस्लिम्स हैव मेड नॉन मुस्लिम एज फ्रेंड्स, टेकन नॉन मुस्लिम एज फ्रेंड्स, ठीक है, क्यों, इसलिए कि तालीमी निजाम जो है वो बनाया वही नॉन मुस्लिम्स का है, और जो तालीमी निजाम बनाता है वो अपने आप को अच्छा पोर्ट्रे करके उसके अंदर प्रेजेंट करता है, अब जब आप इनका बनाया हुआ तालीम निजाम पढ़ रहे होते हैं तो आप उनके बारे में बुरी राय नहीं बना पाते हैं बल्कि अच्छी ही राय बना पाते हैं, नंबर 1 रीजन, ठीक है, और वी आर इन ऑ ऑफ द कुफार एंड आवर डेफिनेशंस हैव चेंज्ड, ठीक है, तो तालीमी निजाम की वजह से वी यानी गेट दिस लाइकिंग टूवर्ड्स, ठीक है, फिर उसके बाद मीडिया से एक्सपोजर मिलता है, मीडिया इज कंप्लीटली इन देयर कंट्रोल कंप्लीटली, अगर कोई समझ रहा है कि इनकम्प्लीटली है तो उसको हिदायत अता फरमाए, इनकम्प्लीटली नहीं है बल्कि कंप्लीटली इन देयर कंट्रोल मीडिया इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, ठीक है, तो उस मीडिया से जो रही सही कसर होती है वो भी खत्म हो जाती है, वही वो भी पूरी हो जाती है, तो अब कुफार के साथ बड़ा तलबी ताल्लुक बन जाता है नॉन मुस्लिम्स, ठीक है, तो अब तलबी ताल्लुक जिससे बना हो ना, अब उसके बारे में बात सुनना गवारा नहीं करता कोई कि ये तो जहन्नुम की आग में जलेगा, ठीक है, इवन प्रिंसिपली स्पीकिंग भी आप उसके बारे में नहीं कि ये नहीं सुनना चाहते कि अब ये तो हमेशा हमेशा की जो है वो आग में जलेगा और उसके तो अजाब होगा और ये तो, ठीक है, और दूसरी बात क्या कि हमारा अपना दीन के साथ जो ताल्लुक है, जो समझ है, जो मोहब्बत है, वो ना होने के बराबर, पता ही कुछ नहीं है हमारा दीन क्या कहता है, हमारे दीन की क्या खूबियां हैं और कुफर और काफरी की क्या बुराइयां हैं। नहीं, ना दीन से मोहब्बत है और ना कुफर और काफरी से नफरत है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना, ये हर वक्त यही फिक्र पड़ी रहती है कि ये क्यों जाएंगे जहन्नुम के अंदर, और अपने बुरे लगते हैं। घर की मुर्गी तो वैसे ही दाल बराबर होती है। ठीक है, तो ये मुसलमान इतने बुरे हैं और वो इतने बुरे हैं, क्योंकि मुसलमानों का तो तालीमी निज़ाम ही नहीं है कि पता चलता है कि अच्छा मुसलमान अच्छे भी होते हैं। वो तो तालीमी निज़ाम है ही नहीं, मीडिया उनके कंट्रोल में ही नहीं है मुसलमानों के। तो मुसलमान की तो अच्छाई और मुसलमान की ये सब तो ओझल रहते हैं निगाहों से। ठीक है, तो ये रीजन हैं कि जिनकी वजह से आज जो है ना, ये मसला बहुत ज्यादा यानी खुल के डिस्कस होता है, और इसका जवाब देने वाला भी कोई नहीं मिलता, और ना वो जवाब पूछने के लिए आते हैं किसी ऐसे बंदे के पास जिससे उसको जवाब मिल भी सके। हम तो सीधा सीधा जवाब देते हैं ना कि नहीं भी, कोई जरूरी नहीं है मुसलमान जन्नत में जाएगा। बिल्कुल सीधा, कोई जरूरी नहीं है कि मुसलमान जन्नत में जाएगा जब तक कि उसका खात्मा ईमान पर ना हो। ईमान पे खात्मा होगा तब वो जन्नत में जाएगा, वरना कोई कोई गारंटी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि मुसलमान जो है वो जन्नत में जाएगा। ठीक है, और ये भी कोई गारंटी है कि नहीं है कि काफिर जन्नत में जहन्नुम में जाएगा। अगर उसका खात्मा ईमान पर हो गया तो वो जन्नत में जाएगा। बात यहां से शुरू करते हैं, तो बहुत बड़ा एक स्टीरियोटाइप जो बना हुआ होता है ना दिमाग में, वो पहले ही जुमले से ही टूट जाता है। पहले जुमले से ही है ना वो क्रश हो जाता है, बाकी बातें बाद में करते हैं। ठीक है, खैर, अच्छा, अपने दीन की अच्छाइयाँ नहीं पता होती हैं, इन्होंने जवाब में लिखा था, और कुफर और काफरी की बुराइयां नहीं पता होती हैं, तो एजुकेटेड नहीं होते ना, अनएजुकेटेड होते हैं हम लोग, इस वजह से ये सारे मसले चल रहे होते हैं। अच्छा, बाकी जो है वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम मुकम्मल हो चुका है, 5 मिनट और हो चुके हैं। तो कोई अगर और सवाल वगैरह है तो पूछ लीजिएगा। मॉडर्न एजुकेशन नॉट कनेक्टेड विद उलमाए हक, उलमाए हक के साथ कनेक्टेड खाली ये नहीं होता कि आप जो है बस वो उनके साथ जाके चिपक जाएं, ये कनेक्टेड होना नहीं होता। इस वजह से थोड़ी हम इसकी एक्सप्लेनेशन कर दें कि उलमाए हक के साथ कनेक्टेड होने का मतलब ये होता है कि यू लर्न फ्रॉम देम, यू लर्न फ्रॉम देम। ठीक है ना, तो कनेक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन अगर इसमें से लर्निंग निकाल दी जाए ना, तो फिर इस कनेक्टेड का कोई नहीं रहता। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लास रोकते हैं। वाह, अलहमदुलिल्लाह।